ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र के समग्र विकास पर उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में सचिव चंचल कुमार के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत।
उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के लगातार प्रयास और परियोजनाओं से 8 राज्यों का पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास की राह पर लगातार अग्रसर है। आज हम कार्यक्रम में इसी विषय पर विस्तार से बात कर रहे हैं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए बीते कुछ वर्षों में जो परियोजनाएं और विकास की योजनाएं हैं उनसे किस तरह से लगातार पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास कर रहा है। हमारे साथ कार्यक्रम में उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में सचिव श्री चंचल कुमार कार्यक्रम में उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका।
धन्यवाद।
तो सबसे पहले हम आपसे यही समझना चाहेंगे कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय किस तरह लगातार प्रयासरत है।
उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय का कार्य भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के सहयोग से पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र और चतुर्दिक विकास के लिए काम करना है। यह भारत सरकार में क्षेत्रीय विशेषाधिकार वाला मंत्रालय है। मंत्रालय का काम पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के बीच एक कड़ी का काम है ताकि सरकार की सभी योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति को मिल सके। इसके अलावा मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र में कई बड़ी बड़ी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। उदाहरण ले तो अगरतला अखाड़ा रेलवे परियोजना को भी इस मंत्रालय द्वारा ही वित्त पोषित किया गया है, जो उसके देश के हिस्से का परियोजना है। इससे उस क्षेत्र के आर्थिक विकास में और वहां की संपर्कता में बहुत मदद मिलेगी।
तो पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए चलाई जा रही जो विभिन्न परियोजनाएं हैं वो किस तरह से जो सरकार की एक्ट ईस्ट नीति है उसके लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है।
यह परियोजना जो हम चलाते हैं, अगर भारत सरकार की नीति जो एक्ट ईस्ट की नीति है उसके संदर्भ में देखें तो यह निसंदेह वहां के आर्थिक विकास को और मजबूती प्रदान कर रहा है। हमारा मंत्रालय एक्ट ईस्ट नीति के तहत विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों में समन्वय स्थापित करता है और वहां की एफिशिएंसी, वहां की दक्षता जो है उन योजनाओं की, उसको बेहतर करता है। और अब अगर हम देखें तो विगत कुछ वर्षों में इसके सकारात्मक परिणाम सामने नजर आ रहे हैं।
क्या कुछ ऐसी विभिन्न परियोजनाओं के बारे में आप प्रकाश डालना चाहेंगे जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास में बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें कई विकास परियोजनाएं हैं, सड़क से जुड़ी हुई, कनेक्टिविटी से, जलापूर्ति, बिजली, तो इन विकास परियोजनाओं के बारे में अगर आप कुछ हमारे श्रोताओं को जानकारी देना चाहें।
विभिन्न मंत्रालयों की बहुत गतिविधियां वहां होती हैं, परंतु इसके अलावा इस मंत्रालय के माध्यम से भी हम भारत सरकार के कई योजनाओं को पूर्वोत्तर क्षेत्र में वहां के सर्वांगीण विकास के लिए क्रियान्वित करते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, पर्यटन आदि के क्षेत्र में हम लोगों ने कई परियोजनाएं वहां चला रखी हैं। अगर हम देखें तो कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं जो हैं उसमें अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में स्वास्थ्य क्षेत्र के तहत राज्य कैंसर संस्थान की स्थापना, असम में स्वास्थ्य क्षेत्र में शिवसागर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना, शिक्षा क्षेत्र में कामरूप जिले के 20 सरकारी स्कूलों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में रूपांतरण, नागालैंड में दीमापुर के पास विद्युत सब स्टेशन का निर्माण, इसी प्रकार मणिपुर में आईटी एसईजेड जोन के लिए आधारभूत संरचना का निर्माण, सिक्किम में भालेडुंगा के पास रोपवे और स्काईवॉक परियोजना की स्वीकृति, त्रिपुरा में 200 बिस्तर वाले मातृत्व और शिशु देखभाल विंग की स्थापना, मेघालय में तुरा के पास आईटी पार्क की स्थापना की योजना, इसी प्रकार मिजोरम में आइजॉल बाईपास का निर्माण। इन सभी परियोजनाओं को हम लोगों ने स्वीकृति दी है। कुछ योजनाएं पूरी हो चुकी है और कुछ क्रियान्वित की जा रही हैं। इन परियोजनाओं के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र में चिकित्सा, अवसंरचना, आजीविका, रोजगार सृजन आदि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।
आपने पर्यटन की बात की तो पर्यटन के क्षेत्र में हम देखें तो पूर्वोत्तर क्षेत्र की बहुत ज्यादा समृद्ध इस मामले में इसलिए माना जाता है क्योंकि वहां की संस्कृति, वहां की परंपराएं और जो शिल्प कला है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो इस मामले में हम देखें तो पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। तो पर्यटन को और ज्यादा समृद्ध बनाने के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय किस तरह से प्रयासरत है, कौन सी विशेष परियोजनाओं पर काम कर रहा है?
पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास में पर्यटन की महती भूमिका हो सकती है और इस बात को हम सभी जानते हैं और इसी कारण से मंत्रालय विभिन्न स्तरों पर प्रयासरत है कि कैसे हम पर्यटन की योजनाओं को वहां मूर्त रूप दे सकें। वर्तमान में जिन पर्यटन स्थलों पर ज्यादा पर्यटक जाते हैं उन स्थानों पर पर्यटकों के लिए सुविधा को बढ़ावा देना, नए पर्यटक स्थलों को चिन्हित कर वहां पर आधारभूत संरचना का निर्माण करना, उनका प्रचार प्रसार करना, पर्यटकों के लिए सुविधाओं को विकसित करना, वहां पर संपर्कता को बढ़ाना, इन सभी के लिए हम लोग विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं। हाल ही में मंत्रालय ने एक कार्यबल का गठन किया है जो राज्य सरकार के साथ बात कर उनके सहयोग और समन्वय के साथ और क्या क्या कार्य हमें इस क्षेत्र में करने हैं इस पर सुझाव देगा। मंत्रालय ने पूर्वोत्तर राज्यों के परामर्श से हर राज्य में एक अच्छे और महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल की पहचान की है, जिसे हम आदर्श पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर सकते हैं। इसके लिए राज्य सरकारों के साथ बातचीत कर हम वहां पर उनकी कमियों को, जो जो आधारभूत संरचना की कमी है उन क्षेत्रों में, उनको पहचान रहे हैं, उसको हम कैसे दूर कर सके, इसके लिए हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, जिससे कि योजनाओं को मूर्त रूप दिया जा सके।
कृषि और हस्तशिल्प, ये और वो विशेष पहचान है जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में कई संभावनाओं को खोलती है। तो कृषि और हस्तशिल्प, हस्तकला को लेकर उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की क्या गतिविधियां या क्या परियोजनाएं हैं जिनसे इस क्षेत्र में और ज्यादा लोगों के जीवन स्तर में सुधार आ सके?
हमारा मंत्रालय भारत सरकार के विभिन्न संबंधित मंत्रालयों जैसे कौशल विकास एवं उद्यमिता, कृषि एवं किसान कल्याण, एमएसएमई, संस्कृति, पर्यटन आदि विभागों और मंत्रालयों के साथ निरंतर वार्ता के द्वारा बातचीत कर यह सुनिश्चित करता है कि उनकी हर योजना का लाभ पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी नागरिकों को मिल सके। साथ ही मंत्रालय अपने पूर्वोत्तर क्षेत्र के संगठनों द्वारा भी कई गतिविधियों पर काम कर रहा है। जैसे पूर्वोत्तर परिषद ने पूर्वी विकास वित्त निगम लिमिटेड नेटफी के सहयोग से जुलाई 2024 में नीरेस नामक एक डिजिटल पहल की शुरुआत की है, ताकि पूर्वोत्तर क्षेत्र से कृषि और बागवानी उत्पादों के लिए ताजे और प्रसंस्कृत सामग्री दोनों रूपों में बाजार से जुड़ाव प्रदान किया जा सके। इसके अलावा अगर वो उभरता हुआ प्रक्षेत्र है जिसके निर्यात की बहुत अधिक संभावनाएं हैं, पूर्वोत्तर क्षेत्र में अगरवुड आर्थिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए महत्वपूर्ण संभावना रखता है, और उनकी इसी क्षमता को पहचानते हुए इसके संवहनीय विकास के लिए हम लोगों ने एक अंतर मंत्रालय कार्यबल का गठन किया था, उन्होंने अपनी सिफारिश दे दी है। अब हम अलग अलग मंत्रालयों के साथ बात कर रहे हैं कि कैसे इसे हम मूर्त रूप दे सके। इसके अलावा हमारा एक और लोक उपक्रम है निरामैक, उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड। इन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्र में लगभग 34,500 किसानों का एक नेटवर्क, एक जाल बनाया है, और 220 किसान उत्पादक कंपनियां भी बनाई हैं। इन्होंने वहां पर 3 विशिष्ट ब्रांड विकसित किए हैं। इन ब्रांड का नाम है एनी फ्रेश, वन, एनी प्रीमियम, और इसमें मूल्यवर्धन के माध्यम से वहां के स्थानीय किसान बागवानी उत्पादों का विपणन कर रहे हैं। 250 से अधिक कृषि आधारित मूल्यवर्धित पैकेज्ड और ब्रांडेड उत्पाद बनाए गए हैं। इससे खुदरा उत्पादों को भी बढ़ावा मिला है, और साथ ही हमारे इस लोक उपक्रम ने कौशल विकास प्रशिक्षण के माध्यम से कृषि बागवानी के क्षेत्र में 12,000 से अधिक युवाओं को भी कुशल बनाया है। इसके अलावा हमारा एक और लोक उपक्रम है निरामैक, जिसने कृषि बागवानी से संबंधित हितधारकों के बीच सीधे विपणन के लिंकेज को विकसित करने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता की बैठक की है। कई अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भाग लिया हमारे वहां के किसानों ने। हमारा पूर्वोत्तर हस्तकरघा और हस्तशिल्प निगम जो है NEHSDC, इन्होंने वहां के विभिन्न कारीगरों को शिल्प मेलों, कला महोत्सवों के माध्यम से वैश्विक उपभोक्ताओं को अपने उत्कृष्ट हस्तशिल्प उत्पादों, पारंपरिक कला रूपों और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए मंच प्रदान किया है, और इसका काफी लाभ वहां पर लोगों को मिला है। इसके साथ ही NEHSDC ने हरियाणा पर्यटन विकास के लिए वहां के सरकार के साथ सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में अपनी भागीदारी और साझेदारी के लिए एक समझौता ज्ञापन भी हस्ताक्षर किया है। इसके साथ ही आपको ज्ञात हो कि इसी वर्ष राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में विविधता का अमृत महोत्सव, हैदराबाद में राष्ट्रपति निलयम में भारतीय कला महोत्सव जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। इससे भी वहां के लोगों को काफी बड़ा मार्केट मिला, लोगों से उनकी क्रेता विक्रेता के साथ काफी अच्छी बातचीत हुई, और इसका लाभ वहां के लोगों को काफी मिला है।
प्रधानमंत्री ने एक विजन दिया था कि प्रत्येक केंद्रीय मंत्री का पूर्वोत्तर क्षेत्र में दौरा हो, ये इस विजन के बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं, और इस विजन को लेकर क्या प्रगति है इस बारे में भी आप बताएं।
माननीय प्रधानमंत्री का एक्ट ईस्ट नीति के तहत यह विशिष्ट निर्देश रहा है कि हम अपने सभी योजनाओं को तेजी से वहां चलाएं, और इसके क्रियान्वयन को देखने के लिए समय समय पर माननीय मंत्री को भी वहां भेजें। पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास की गति में और तेजी लाने के लिए और जितनी भी योजनाएं विभिन्न मंत्रालयों द्वारा चलाई जा रही है उसको देखने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश के मुताबिक हर 15 दिन में एक केंद्रीय मंत्री पूर्वोत्तर राज्य का दौरा करते हैं। वर्ष 2015 से हर महीने बारी बारी से पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा करने के लिए हम लोग केंद्रीय मंत्रियों को नामांकित करते हैं और उनकी इन यात्राओं का संचालन और समन्वय करते हैं। अब तक 2015 के बाद से लगभग 715 केंद्रीय मंत्रियों ने पूर्वोत्तर क्षेत्र का दौरा किया है। 60 से अधिक बार माननीय प्रधानमंत्री स्वयं जा चुके हैं, अब तो यह संख्या और भी बढ़ गई है। और इन दौरों की निगरानी को सुव्यवस्थित और संबंधित करने के लिए हम लोगों ने पूर्वोत्तर संपर्क नामक एक पोर्टल भी बनाया है, जिसमें माननीय मंत्रियों के यात्राओं से संबंधित, योजनाओं से संबंधित सारी जानकारी रहती है जो लोग देख सकते हैं। और इसका लाभ यह मिला है कि माननीय मंत्रीगण जब क्षेत्र में जाते हैं तो वहां के लोगों से बातचीत करते हैं, योजनाओं को क्रियान्वित होते हुए देखते हैं और उसमें पारदर्शिता लाने के लिए, उसको बेहतरी के लिए अगर और कोई सुझाव देना है तो सुझाव भी देते हैं और हम इसका समय समय पर अनुश्रवण भी करते हैं।
उद्योगों की बात करें, हम अगर निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी की बात करें तो सरकार इस क्षेत्र को, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए बहुत गंभीरता से देख रही है, तो हम आपसे समझना चाहेंगे कि जो हमारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र है वहां प्राइवेट सेक्टर और उद्योगों के और निवेशकों की क्या संभावनाएं हैं।
केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र की संपूर्ण विकास गाथा में बहुत महत्वपूर्ण रूप से सम्मिलित है। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि भारत सरकार ने पिछले 10 वर्षों में 54 मंत्रालयों द्वारा 5,15,000 करोड़ रुपए के लक्ष्य के विरुद्ध लगभग 5,22,000 करोड़ रुपए का खर्च वहां किया है विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से। वर्ष 2023-24 में यदि देखें तो लगभग 92,000 करोड़ के लक्ष्य के विरुद्ध हम लोगों ने 1,02,749 करोड़ रुपए का व्यय किया था। इसके अलावा मंत्रालय पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास में यदि कोई निजी क्षेत्र में आना चाहता है तो उसे भी प्रोत्साहित करता है और हम लोग कई प्रयास कर रहे हैं। वर्ष 2025 में हम लोग निवेशक शिखर सम्मेलन करने की तैयारी में हैं और इसके लिए अब तक हम लोगों ने लगभग 6 राज्यों के साथ गोलमेज सम्मेलन, राजदूतों की बैठक, विदेशी चैम्बर, वाणिज्य उद्योग और दूतावास के संघों के साथ कई हम लोगों ने गोलमेज सम्मेलन किया है। इसके अलावा हम लोगों ने मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और बेंगलोर में 4 रोड शो किया है। वाइब्रेंट गुजरात 2024 में भी हम लोगों ने भाग लिया था। इन सभी जगहों पर हम 8 पूर्वोत्तर राज्यों के साथ जाते हैं और वहां के निवेशकों के साथ बातचीत करते हैं। मंत्रालय ने 6 मार्च 2024 को एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर करने का कार्यक्रम आयोजित किया था जिसमें लगभग 30,000 करोड़ से अधिक के निवेश के समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया गया था। इसके अलावा हम लोग पूर्वोत्तर क्षेत्र के 8 राज्यों में निवेश संवर्धन इकाइयां जो होती हैं उनकी निवेश संवर्धन एजेंसियों को सुदृढ़ करने के लिए भी हम लोग पहल कर रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने इन्वेस्ट इंडिया के साथ एक द्विपक्षीय समझौता भी हस्ताक्षरित किया है। इसके अलावा विदेशी और घरेलू निवेशकों को आकर्षित करने के लिए हम लोग इन्वेस्ट इंडिया के पूर्वोत्तर डेस्क को भी सुदृढ़ कर रहे हैं। सारे राज्यों के साथ हम बात करके वहां निवेशक के अनुकूल औद्योगिक नीतियां बनाने के लिए भी उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं। यह हर्ष का विषय है कि हाल ही में असम में सेमीकंडक्टर विनिर्माण के लिए उद्योग लगाने के लिए लोगों ने अपनी रुचि दी है और यह कार्यान्वित किया जा रहा है। इससे वहां आसपास के इलाकों में भी विनिर्माण के, खासकर आईटी सेक्टर में छोटी बड़ी इकाइयों की स्थापना को काफी प्रोत्साहन मिलेगा।
अंत में हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि विकास के साथ सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर भी बहुत जोर है और इस ओर भी सरकार प्रयास कर रही है, तो पूर्वोत्तर क्षेत्र के संदर्भ में हम आपसे अगर संक्षेप में समझना चाहें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सरकार किस तरह से देख रही है।
मंत्रालय ने अब तक का पहला पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला एसडीजी सूचकांक जारी किया था और अब जिला स्तर पर आंकड़ों की उपलब्धता हमारे पास डैशबोर्ड के माध्यम से 2021 से उपलब्ध हो गई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में जिला एसडीजी सूचकांक विकास के सामाजिक, मानव, आर्थिक, अवसंरचनात्मक और पर्यावरणीय आयामों पर हम लोग वहां के 103 जिले को मापते हैं, उनकी रैंकिंग करते हैं। जिला एसडीजी सूचकांक ने विभागीय योजनाओं के चयन को और युक्तिसंगत बनाने में मदद की है, अर्थात यदि किसी एसडीजी इंडेक्स पर वहां कमी है तो हम लोग वहां पर उसी क्षेत्र की योजनाओं को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हुए स्वीकृति देते हैं। यह आजीविका, विशेषकर महिलाओं और युवाओं के लिए अवसरों को बढ़ावा देने के लिए अवसंरचना और सामाजिक विकास निधि भी प्रदान करती है। इसके माध्यम से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हम करते हैं, उस संवहनीय विकास के लिए हमारे लक्ष्य जो है उसे हम जल्दी प्राप्त कर पाएंगे, चूंकि अब हम जिलावार एसडीजी इंडेक्स की अनुश्रवण की समीक्षा करते हैं और उसको बेहतर करने के लिए हम योजनाओं की स्वीकृति उसी अनुसार देते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद सर आकाशवाणी को समय देने के लिए और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास में जो परियोजनाएं हैं सरकार की, जो पहल हैं, उसके बारे में आपने हमारे श्रोताओं को विस्तार से बताया। इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे उत्तर पूर्वी क्षेत्र के समग्र विकास पर उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में सचिव चंचल कुमार के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289904044।